चा में जम पेशकश रेडियो तेहरान।
अजीज सामीन, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम के साथ दीनी व अखलाकी मालूमात पर मुश्तमिल प्रोग्राम जाम जम लेकर हाजिर हैं। हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने बच्चों का भोसा लिया करो, इसलिए कि तुम्हारा हर भोसा तुम्हारे लिए बहिश के एक दर्जे को बढ़ा देगा। सुनते रहिए जाम जम। इंसान मोहब्बत और तवज्जो का भूखा होता है। मोहब्बत और तवज्जो दिलों को हयात बख्शती है। इंसान चूंकि खुद को पसंद करता है, लिहाजा चाहता है कि लोग उसे भी पसंद करें। मोहब्बत और चाहत इंसान को शादमानी और खुशहाली अता करती है। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो दो दिलों पर मसावी तौर पर असरअंदाज होता है। अगर इंसान किसी को न चाहे या पसंद न करे तो उसकी तरबियत कैसे करेगा। तरबियत औलाद में मोहब्बत का किरदार बुनियादी हैसियत का हामिल है। मोहब्बत उस्ताद और शागिर्द के दरमियान राबता बरकरार करने में नहायत अहम और कलीदी किरदार अदा करती है। बेहतरीन राबता वो है जिसकी असासो बुनियाद मोहब्बत पर हो, इसलिए कि यह एक फितरी रास्ता है। इसके अलावा दूसरे तमाम रास्ते जिनकी बुनियाद जोर जबरदस्ती और तसन्नो बनावट वगैरह पर होती है, वो सब गैर फितरी और गैर मुफीद राबते हैं। बच्चों की अहम तरीन फितरी और रवानी जरूरत मोहब्बत और तवज्जो हासिल करना है, और चूंकि वालदैन बच्चों के सबसे पहले सरपरस्त और मुरब्बी हैं, लिहाजा उनके लिए जरूरी है कि वो बच्चों की इस फितरी जरूरत पर खास तवज्जो मबजूल करें, क्योंकि यही वो जरूरत है जो उनकी तरबियत की असास और बुनियाद को तश्कील देती है। लिहाजा इस जरूरत का पूरा होना उनके लिए रवानी और फितरी सलामती, एतमाद नफ्स और वालदैन पर एतबार का सबब और जरिया होने के साथ साथ उनकी जिस्मानी सलामती का भी बाइस है। लिहाजा वालदैन का फरीजा है कि तरबियत की बुनियाद मेहर व मोहब्बत पर रखें, इसलिए कि अगर ऐसा नहीं होगा तो वो इर्तिबात जो बच्चों के रुश्द व कमाल का सबब बन सकता है बरकरार नहीं हो सकेगा और सही तरह से तरबियत नहीं हो सकेगी। और अगर वालदैन का सलूक तुंद व सख्त होगा तो बच्चे की रूही और रवानी रिख्त व शिकस्त का सबब बन जाएगा। मोहब्बत और उल्फत पैदा करने वाले काम तमाम इंसानों के लिए नहायत जरूरी हैं, खास तौर पर तालीमी और तरबती इदारों के लिए, इसलिए कि मोहब्बत ही ऐसी शय है जो जिस्म और रूह की सलामती के साथ साथ इंसान की अखलाकी बुराइयों और कमजोरियों की इसलाह और बहबूद का जरिया बनती है। इंसानों से राबते की जबान, खास तौर पर बच्चों से राबते की जबान मोहब्बत होनी चाहिए। गुस्सा और तुंदी और सख्ती से किसी की तरबियत नहीं की जा सकती। तरबियत में मोहब्बत की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि मोहब्बत इताअत सिखाती है और मोहब्बत करने वाले एक दूसरे से मुतमस्सिक हो जाते हैं। मोहब्बत और इताअत में मईयत यानी साथ रहने का जज्बा पाया जाता है। मोहब्बत के जहूर के साथ इताअत और हमराही का भी जज्बा बेदार हो जाता है। अगर बच्चे के दिल में वालदैन की मोहब्बत बैठ गई तो बच्चा उनका मुतीओ फरमाबरदार बन जाएगा और उसके ऊपर जो जिम्मेदारियां डाली जाएंगी वो उनसे सरपेची नहीं करेगा। मोहब्बत बच्चों की जहनी नशोनुमा के अहम असबाब में से है। उनकी जाती खूबियां और सलूक काफी हद तक मोहब्बत की मरहून मिन्नत हैं जो उन्हें इस तरबियत के दौरान मिली है। घर की मोहब्बत भरी फिजा और मोहब्बत से ममलू माहौल बच्चों में नरम जज्बात और फजाइल के रुश का सबब है। जो बच्चे मोहब्बत भरे माहौल में तरबियत पाते हैं वो कमाल तक पहुंचते हैं, अच्छे ढंग और तौर तरीके सीखते हैं, दूसरों से मोहब्बत करते हैं और समाज व मुआशरे में बेहतरीन इंसानी अकदार के हामिल होते हैं। मेहर व मोहब्बत ही है जो जिंदगी को पुरलुत्फ और बामाना बनाती है और बच्चों की इस्तेदाद की शकुफाई और जहूर का सबब बनती है और इसमें सही और कोशिश और तख्लीकी सलाहियतें पैदा करती हैं। वालदैन को चाहिए कि वो कल्बी तौर पर अपने अमल से बच्चों को ये यकीन दिलाएं कि वो उन्हें दोस्त रखते हैं। उनकी ये बात बच्चों पर मुस्बत असर डालेगी और कुछ ही अरसे में उसका नतीजा सामने आ जाएगा। والدین بچوں میں ایسی تبدیلی لانا چاہتے ہیں جو ان کی ذات کو تعمیر کرے اور مخصوص اعتقادات ان کے اندر جنم لیں، تو ظاہر ہے کہ یہ کام بغیر محبت اور دوستی کے کیسے ممکن ہو سکتا ہے، جس کا مقصد انہیں رشد و کمال کی طرف لے جانا ہے۔ بچوں کی ذہنی اور روحی تربیت میں محبت کا کردار غذا کی طرح ہے۔ جس طرح سے غذا کی کمی و زیادتی اس کے جسم کے اوپر مثبت و منفی اثر ڈال سکتی ہے، اسی طرح محبت و توجہ کی کمی و زیادتی اس کے دل و دماغ پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب رضوان سجاد صاحب، ضلع اوریا، یو پی، ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ادھر کافی دنوں سے خط نہ لکھ سکا، مصروفیت کافی تھی، مگر پروگرام باقاعدگی سے سن رہا تھا۔ پروگرام روز بروز عمدہ ہوتے جا رہے ہیں، خدا کا شکر ہے۔ میری جانب سے ہاشم علی اور حسین اختر صاحبان کی خدمت میں سلام عرض کیجیے گا، بہت بہت شکریہ۔ اور سامعین، محترم جناب رضوان سجاد صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک کہانی۔
حاتم اسلم تیسری ہجری قمری میں خراسان کے بہت ہی مشہور عارف و زاہد تھے۔ زہد و حکمت کے بارے میں ان کی باتیں لوگوں کے دل میں اتر جایا کرتی تھیں۔ وہ اپنے زمانے کے لوگوں کی قرآن کی قرآت کے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ حاتم کا کہنا تھا کہ قرآن کی تلاوت اور بزرگوں کے واقعات پڑھنے سے تزکیہ نفس میں بہت مدد ملتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار جب وہ بغداد آئے تو خلیفہ کو اطلاع دی گئی کہ خراسان کے زاہد آئے ہیں۔ خلیفہ نے انہیں فوراً اپنے دربار میں بلا بھیجا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ دربار میں آئے تو خلیفہ کو بلند آواز میں مخاطب کیا، اے زاہد۔ خلیفہ نے فوراً جواب دیا، میں زاہد نہیں ہوں، پوری دنیا میرے فرمان کے تحت ہے۔ زاہد تو آپ ہیں جو مختصر پر ہی قناعت کرتے ہیں اور مال دنیا میں سے کچھ بھی اپنے پاس جمع نہیں کیا ہے۔ حاتم نے کہا، نہیں، زاہد تم ہو، تم نے دنیا جیسی گھٹیا اور بے قیمت چیز پر قناعت کی ہے۔ کیا قرآن نے نہیں فرمایا ہے کہ متاع دنیا بہت ہی کم ہے؟ تم نے بھی اس سے زیادہ تو اپنے لیے کچھ جمع نہیں کیا، سوائے دنیا کے تمہارے پاس اور ہے ہی کیا؟ میری قسمت میں خدا نے جو نعمتیں لکھی ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں جو تمہارے پاس ہے، لہذا زاہد تم ہو۔ حاتم اسلم کی بات سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا اور خلیفہ نے بھی شرمساری سے اپنا سر جھکا لیا۔
سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام جامع جم اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔